यशाया अध्याय 31। आइए हम यशाया पुस्तक का अध्याय 31 खोले। यशाया अध्याय 31 की पृष्ठभूमि यह है कि यहूदा पर अशुरों का आक्रमण अधिक दूर नहीं था। इस समय अशुर विश्व विजेता था। उसने उत्तरी राज्य इसराइल का विनाश कर दिया था, आराम सीरिया को और बाबुल को जीत लिया था, और अब अशुर दक्षिणी राज्य यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए बड़ी सेना लेकर आ रहा था। वो यहूदा के कुछ नगरों को जीत चुका था। हिजकिया पर कुछ लोग दबाव डाल रहे थे कि वो मिस्र से संधि कर ले और मिस्र जाकर मिस्र से सहायता मांगे कि इस आक्रमण को रोकने के लिए मिस्र की सेना उसे दी जाए। अतः यशाया ने कहा, नहीं, तुम्हारी वीरता शांत बैठे रहने में है, कुछ मत करो। परमेश्वर तुम्हें अशुरों के हाथ से छुड़ाएगा। शरीर की भुजाओं पर भरोसा मत रखो, यहोवा पर भरोसा रखो। यहां अप्रत्यक्ष में एक दबाव गुट है जो मिस्र के साथ समझौते का प्रस्ताव रखना चाहता है कि इस अशुर सेना के आक्रमण को रोका जाए। इस कारण यशाया कहता है, यशाया अध्याय 31 पद 1, हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इस्राएल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और ना यहोवा की खोज करते हैं। वो उन पर हाय कह रहा है जो परमेश्वर के स्थान पर मनुष्य से सहायता मांग रहे हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या कारण है कि हम परमेश्वर के पास आना अंतिम समाधान समझते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संकट के समय हम स्वाभाविक रूप से पहले मनुष्य का हाथ थामते हैं। हम युक्तियां खोजते हैं कि क्या करें और कैसे करें, मानवीय सहायता कैसे खोजें, तथा अपने मित्रों के आगे हाथ फैलाते हैं कि हमें सहायता प्राप्त हो। हम परमेश्वर के निकट नहीं आते हैं, उससे सहायता नहीं मांगते हैं। इस कारण यशाया उन पर हाय कह रहा है जो मिस्र से सहायता की भीख मांग रहे हैं। वे उनके रथों पर, उनके गुड़ सवारों पर भरोसा रखते हैं। वे परमेश्वर से सहायता की आशा नहीं रख रहे हैं। ये हमारे लिए एक अच्छा सबक होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें। भजन संहिता 118 8 और 9 पद, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। यशाया अध्याय 31 पद 2 और 3, परंतु वो भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वो अपने वचन ना टलेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाले और सहायता चाहने वाले दोनों ठोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। मिस्र के बुजबल पर भरोसा मत रखो, वे केवल मनुष्य हैं, वे परमेश्वर नहीं हैं। उनके घोड़े पशु हैं, आत्मा नहीं। उत्तम बल और उत्तम सहायता परमेश्वर के आत्मा से प्राप्त होती है, क्योंकि जब परमेश्वर अपना हाथ उठाता है तो वो किसी भी कार्य को करने में सामर्थी है। यशाया अध्याय 31 पद 4, फिर यहोवा ने मुझसे यों कहा, जिस प्रकार सिम या जवान सिम जब अपने आहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वो उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने को उतरेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो, मिस्र पर भरोसा मत रखो। परमेश्वर पर भरोसा रखो क्योंकि वो नीचे उतर आएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सिम या जवान सिम जब अपने आहेर पर गुर्राता है, जब शेर किसी भेड़ को पकड़ता है तब वो दबकता है और सब चरवाहे एकत्र होकर बहुत शोर मचाते हैं कि शेर भाग जाए। वे शोर मचाकर शेर को डराना चाहते हैं कि वो भाग जाए। प्रभु कहता है, जवान सिम जब अपने आहेर पर गुर्राता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वो उनके बोल से ना घबराएगा और ना उनके कोलाहल के कारण दबेगा। कहने का अर्थ यह है कि यहोवा युद्ध करने को उतरेगा, वो सियोन के लिए युद्ध करेगा। परमेश्वर अपनी प्रजा की रक्षा करेगा। आपको मनुष्य पर निर्भर नहीं होना है। अंग्रेजी में एक गाना है जिसका अर्थ है, मांस की भुजा तुम्हें निराश करेगी। अपनी भुजा पर भरोसा रखने का साहस मत कर, राजसी कवच धारण करो। पद 5 बड़ा रोचक पद है। हम देख चुके हैं कि भविष्यवाणी की पूर्तियां दो प्रकार से होती है। यहां भविष्यद्वक्ता किसी स्थानीय परिस्थिति की बात कर रहा है। ये परिस्थिति अशुरों के आने वाले आक्रमण है और वो कहता है कि मिस्र से सहायता की आशा मत रखो। वो एक स्थानीय परिस्थिति की चर्चा करते हुए पद 5 में आता है। भविष्यत वक्ताओं की विशेषता यही रही है कि वे अकस्मात ही दूर भविष्य के विषय कुछ बोलते हैं जिसका स्थानीय परिस्थिति से कोई संबंध नहीं होता है, या स्थानीय परिस्थिति से संबंधित हो तो भी वो दूर भविष्य की भविष्यवाणी सिद्ध होती है। पुराने नियम की अनेक भविष्यवाणियों में यह देखने को मिलता है। भविष्यत वक्ताओं ने जो भविष्यवाणियां लिखी है उन्हें वे स्वयं नहीं समझ पाते थे। नया नियम में लिखा है कि इन भविष्यत वक्ताओं ने इन बातों को समझने की कामना की, परंतु वे उनसे छिपी रही, वे समझ ही नहीं पाए। उन्होंने केवल परमेश्वर की प्रेरणा में लिख दिया था। वे जो कहते थे स्वयं नहीं समझते थे। जब नया नियम किसी भविष्यवाणी का अर्थ निर्धारण करता है, तब हमें इसका अर्थ समझ में आता है, अन्यथा केवल पढ़ने से उसका संबंध स्पष्ट नहीं होता है। उदाहरण देखिए, भजन संहिता में लिखा है, वो अवश्य गिरेगा और दूसरों को उसका स्थान लेने दो। पत्रस ने इस पद को यहूदा से संबंधित बताया कि वो अपराध के कारण गिरेगा और उसका पद दूसरे को दिया जाएगा, इसलिए किसी को चुना जाए कि वो यहूदा इस्करियोती का स्थान ले। परंतु जब आप उस भजन को पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा कि वो भविष्यवाणी किसके विषय में है। पुराने नियम में भविष्यवाणी है कि वो उसे मिस्र से निकाल कर लाएगा। सुसमाचार वृत्तांत में मती कहता है कि उस भविष्यवाणी का संबंध यूसुफ और मरियम के मिस्र जाने से था। यदि पुराना नियम ही पढ़ा जाए तो इसे समझ पाना कठिन है, परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित नए नियम की टीका हमें भविष्यवाणियों को समझने में सहायक होती है। मेरे विश्वास में ये पद उन छोटी भविष्यवाणियों के हिस्सों में से एक है जिन्हें यहां डाला गया है कि उनकी पूर्ति दूर भविष्य में हो। 1917 में जब तुर्क यरूशलेम पर अधिकार किए हुए थे, तब जनरल एलनबी अपने ब्रिटिश फौज लेकर आया और यरूशलेम के चारों ओर तोपे लगा दी और गोलाबारी की योजना बना रहा था कि तुर्कों की सुरक्षा को तोड़ा जाए, तदोपरांत नगर में प्रवेश किया जाए, क्योंकि यरूशलेम में अनेक पवित्र स्थान थे। जनरल एलनबी अति सावधानी से केवल तुर्क चौकियों पर गोले दाग रहा था। वो नगर का सर्वनाश नहीं करना चाहता था, क्योंकि यरूशलेम में प्राचीन काल की अनमोल स्मारकें, इमारतें आदि थी। उसने अपनी हवाई जहाजों को नगर पर उड़ान भरकर तुर्की चौकियों की टोह लेने भेजा, जिससे वो केवल तुर्क चौकियों पर ही हमला करे। जब ये ब्रिटिश हवाई जहाज नगर के ऊपर आए, तब दुर्ग के तुर्की कप्तान ने सिपाहियों को यरूशलेम खाली करने का आदेश दिया। उसने सोचा कि एलनबी यरूशलेम में उनकी चौकियों पर बम बरसाएगा। उन्होंने यरूशलेम को खाली कर दिया और एलनबी ने बिना तोप चलाए यरूशलेम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार वहां की सब प्राचीन स्मारकें सुरक्षित रही। इसका कारण केवल उन सर्वेक्षण हवाई जहाजों का यरूशलेम के ऊपर से उड़ना था। 1917 की इस ऐतिहासिक भूमिका के प्रकाश में आप पद 5 को पढ़िए, यशाया अध्याय 31 पद 5। पंख फैलाई हुई चिड़ियों की नाई, सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वो उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। 1917 में यरूशलेम ब्रिटिश फौज की गोलाबारी से इन हवाई जहाजों के कारण बचाया गया था। ये सर्वेक्षण यान थे, परंतु तुर्क इनसे भयभीत होकर यरूशलेम को खाली कर निकल गए। ये बड़ी विचित्र बात है कि अशूरों के लिए भविष्यवाणी देते हुए यशया ने यहां भविष्यवाणी का ये एक भाग अलग से डाल दिया था, जो 1917 में पूरी हुई, जब जनरल एलनबी ने तुर्कों से यरूशलेम लिया था। यशाया अध्याय 31 पद 6। हे इसराइलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है, उसी की ओर फिरो। परमेश्वर की ओर फिरने के लिए ये यशया की पुकार है। तुमने परमेश्वर से बलवा किया है, परंतु वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो तुम्हारा गढ़ होगा। यशाया अध्याय 31 पद 7। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से, जिन्हें तुम बनाकर पापी हो गए हो, घृणा करोगे। उन्होंने स्वयं अपने देवताओं को बनाया था, वे मूर्ति पूजा करने लगे थे। उन्होंने वही काम किया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें मना किया था। ये पद उनके मन फिराव के बारे में कहता है। यशाया अध्याय 31 पद 8 और 9। तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वो उस तलवार का कौर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वो तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वो भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा और उसके हाकिम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका भट्टा यरूशलेम में है, उसी की ये वाणी है। यशया ये भविष्यवाणी कर रहा है कि परमेश्वर अशूरों का नाश करेगा, इसलिए उन्हें मिस्र भागने की आवश्यकता नहीं है और ना ही उनसे सहायता मांगने की आवश्यकता है। यहोवा वास्तव में उनका नाश करेगा। वो मनुष्य की तलवार से नहीं, वरन स्वयं आकर उनका नाश करेगा। यशिया की भविष्यवाणी को समझने के लिए आवश्यक है कि उसे उसके ऐतिहासिक परिदृश्य में देखा जाए। इस क्षेत्र को पृष्ठभूमि हेतु आपको दूसरा राजा की पुस्तक पढ़ना आवश्यक है। अध्याय 17 पढ़ना आरंभ करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि वहां अशूरों द्वारा उत्तरी राज्य के विध्वंस का विवरण है। अध्याय 18 में हिजकिय्याह के पास संदेश वाहकों का भेजा जाना आदि है। दूसरा राजा अध्याय 19 में हमें देखने को मिलता है। दूसरा राजा अध्याय 19 35 से 37 पर। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 185,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब अशूर का राजा सैनहरीब चल दिया और लौटकर निनवे में रहने लगा। वहां वो अपने देवता निस्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि अदेमेलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए, और उसी का पुत्र एसरहद्दोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। ये यशया की भविष्यवाणी थी। इसके बाद दूसरा राजा में आपको पढ़ने को मिलेगा कि ये भविष्यवाणी पूरी कैसी हुई। अशुरों का नाश हुआ, परंतु मनुष्य की तलवार से नहीं, परमेश्वर के स्वर्गदूत की तलवार से, जिसने एक ही रात में 185,000 सैनिकों को मार डाला। अब स्वर्गदूतों के बारे में देखिए, जिनकी रचना मनुष्य से पहले की गई थी। ये एक विशेष श्रेणी की सृष्टि है। ये आत्माएं तो है, परंतु इनमें कैसा भी भौतिक रूप धारण करने की क्षमता है। पुराने नियम में स्वर्गदूतों ने कई बार शरीर धारण किया था। इब्राहिम ने यहोवा के स्वर्गदूत से बात की थी। गिदोन को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने खलियान में दर्शन दिया था। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने शिमशोन की माता को दर्शन दिया था। स्वर्गदूतों ने कई बार पुराने नियम के अनेक मनुष्यों को दर्शन दिए थे। नए नियम में जब पत्रस बंदीगृह में था, परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर उसे जगाया और कहा, अपने जूते पहन और मेरे पीछे आ। पत्रस जूते पहनकर उसके पीछे हो लिया। बंदीगृह के द्वार अपने आप ही खुलते गए। वो स्वर्गदूत पत्रस को बंदीगृह से बाहर लाया और अदृश्य हो गया। प्रेरित पौलुस ने नाविकों से कहा, प्रेरितों के काम 27 अध्याय 22 और 23 पर, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं, उसके स्वर्ग दूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। पुराना नियम में स्वर्ग दूतों के लिए लिखा है, भजन संहिता 91:11-12 पद, क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग दूतों को विभिन्न उत्तरदायित्व दिए हैं, कि परमेश्वर की संतान होने के कारण वे हमारी निगरानी करें। इब्रानियों की पुस्तक में हम स्वर्ग दूतों के बारे में पढ़ते हैं। इब्रानियों 1:14 पद, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? शैतान भी एक समय परमेश्वर का स्वर्गदूत था। उसने परमेश्वर के अधिकार का विरोध किया था। लिखा है कि उसके साथ एक तिहाई स्वर्ग दूतों ने परमेश्वर के अधिकार के विरोध में शैतान का साथ दिया था। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 में लिखा है कि उसने अजगर को देखा कि उसने अपनी पूंछ से स्वर्ग के तारों के एक तिहाई भाग को घिरा दिया। स्वर्ग के तारे अनेक बार स्वर्ग दूतों को दी गई उपाधि है। तो यहां यह विचार है कि शैतान ने विद्रोह में अपने साथ एक तिहाई स्वर्ग दूतों को सहभागी बनाया था। ये आत्माएं हमारे लिए आज भी एक रहस्य की बात बनी हुई है, परंतु अनेक रहस्यमय घटनाएं स्वर्ग दूतों की उपस्थिति के द्वारा समझी जा सकती हैं। ये वे अद्भुत घटनाएं होती हैं जिन्हें समझना हमारी समझ के परे है। मेरे विचार में अधिकांश मनोवैज्ञानिक घटनाएं आत्माओं के क्षेत्र से संबंधित है जो स्वर्ग दूतों का कार्य क्षेत्र है। आवश्यक नहीं कि ये परमेश्वर के स्वर्ग दूतों का क्षेत्र हो। जब से शैतान के साथ अनेक स्वर्ग दूतों का पतन हुआ, तभी परमेश्वर ने उनके लिए एक अनंत वास का स्थान तैयार कर दिया था, जहां उन्हें अंत में कैद करके रख दिया जाएगा। एक अस्थाई बंदीगृह भी है, जिसे बाइबल में अथाह कुंड लिखा है, परंतु उनकी अंतिम कैद है नरक, जिसे यीशु ने कहा था कि वो जगत से बाहर अंधकार है। हो सकता है कि ब्रह्मांड से बाहर कहीं जहां किसी भी सितारे का प्रकाश पहुंचता न हो। यीशु ने कहा कि जब पृथ्वी का न्याय करने आएगा, तब कुछ पृथ्वी वासियों से जिन्होंने पशु का मुहर लगाई है और झूठे मसीह की उपासना की है, उनसे कहेगा, हे बुराई करने वालों, मुझसे दूर हो जाओ, नरक में जाओ जो शैतान और उसके स्वर्ग दूतों के लिए तैयार किया गया है। यद्यपि नरक शैतान और उसके स्वर्ग दूतों के लिए है, उनके अनुयायी भी वहीं भेजे जाएंगे। भजन संहिता लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत, भजन संहिता 34:7 पद, यहोवा के डरवियों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, और पद 15, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परंतु हमें स्वर्ग दूतों की उपासना करना मना है। कोई आपको स्वर्ग दूतों की उपासना करके झूठी नम्रता के लिए ना बहकाए। हमें स्वर्ग दूतों की उपासना नहीं करना है। जब दानियल उस स्वर्ग दूत को दंडवत करने लगा जो उसके पास परमेश्वर का संदेश लाया था, तब उसने उससे कहा, खड़ा हो, क्योंकि मैं तेरे समान एक मनुष्य हूं, मैं तेरी ही श्रेणी का हूं, मैं तो परमेश्वर का दास हूं, मेरी नहीं परमेश्वर की उपासना कर। अनेक बार जब स्वर्ग दूत लोगों के सामने आए तो लोग भयभीत हो जाते थे। यही कारण था कि स्वर्गदूत कहते थे, मत डर, दो स्वर्गदूत असामान्य हैं, मिकाएल और जिब्रेल। मिकाएल को बलवंत राजकुमार कहा गया है। जिब्राइल ऐसा प्रतीत होता है कि मसीह के जन्म के लिए व्यवस्था करने में व्यस्त था। उसने मरियम को भी दर्शन दिया और कहा कि वो मसीह को जन्म देगी। वो 600 वर्ष पूर्व दानियल के पास आया था और उसने मसीह के आने की भविष्यवाणी उसे दी थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे आश्चर्यजनक प्राणी हैं जो परमेश्वर के सिंहासन को घेरे रहते हैं और दिन रात कहने से नहीं चूकते, पवित्र 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 सर्वशक्त परमेश्वर प्रभु। जब हम स्वर्ग जाएंगे तब इन स्वर्ग दूतों को देखना बड़ा रोचक होगा। आज उनके बारे में हमारा ज्ञान सीमित है। बाइबल उनके विषय में हमें कहती है कि अपरिचित व्यक्तियों के सत्कार करने में सावधान रहो, आप नहीं जानते कि आप कब किसी स्वर्गदूत की सेवा कर रहे हैं। अशूर एक ही स्वर्गदूत द्वारा नाश किए गए थे। वे 185,000 थे। इसका अर्थ ये हुआ कि वे मनुष्य की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। इन आत्मिक प्राणियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर के स्वर्गदूत है? इससे मुझे ध्यान आया कि जब लोग यीशु को पकड़ने वाटिका में आए थे, तब पतरस ने तलवार चला दी थी और मलकस का कान काट दिया था। वो महायाजक का सेवक था। यीशु ने उसका कान जोड़कर पतरस से कहा, पतरस तलवार रख ले। उसने कहा, क्या तू नहीं जानता कि यदि मैं चाहूं तो इसी समय 10,000 स्वर्ग दूतों की सेना बुला सकता हूं जो मुझे इनके हाथों से छुड़ा लेगी? मुझे तेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है पतरस। हम प्रायः ये सोचते हैं कि परमेश्वर को हमारी सहायता की आवश्यकता है, चलो हम प्रभु की सहायता करें। नहीं, प्रभु कहता है, हे पतरस, मुझे तेरी सहायता नहीं चाहिए। मैं 10,000 स्वर्ग दूतों को बुला सकता हूं कि वे मुझे छुड़ा लें। अब जरा ध्यान दीजिए कि एक स्वर्गदूत जब 185,000 सैनिकों को मार सकता है, तो आप कल्पना कीजिए कि 10,000 स्वर्गदूत क्या कहर बरसा देंगे। यही कारण है कि जब परमेश्वर इसराइल की इस भावी घटनाओं के विषय कहता है, तब आप सोचते होंगे कि छोटा सा राष्ट्र इसराइल उनका सामने कैसे टिक सकता है। आपको इसराइल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी सेना और अपना बल उनके हमलेवारों के विरुद्ध लगाएगा, और ये एक महान जागृति का समय होगा। उस समय मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा।